श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 21 गोपियों के द्वारा गोवर्धन का गुणगान श्लोक क्रमांक 18। हंताय मद्रिरबला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदः मानं तनोति सहगो गणयोस्तयोर्यत् पानीय सूयवस कंदर कंदमूलै। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के शिष्यों द्वारा समस्त भक्तों में से यह गोवर्धन पर्वत सर्वश्रेष्ठ है। हे सखियों, यह पर्वत कृष्ण तथा बलराम के साथ ही साथ उनके गौओं बछड़ों तथा ग्वाल बालों को सभी प्रकार की आवश्यकताओं, पीने का पानी, अति मुलायम घास, गुफाएं, फल फूल तथा तरकारियों की पूर्ति करता है। इस तरह यह पर्वत भगवान का आदर करता है। कृष्ण तथा बलराम के चरण कमलों का स्पर्श पाकर गोवर्धन पर्वत अत्यंत हर्षित प्रतीत होता है। तात्पर्य उपर्युक्त अनुवाद श्रील प्रभुपाद कृत्य चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला से उद्धृत किया गया है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन पर्वत के ऐश्वर्य की विवेचना इस प्रकार की है। पानी गोवर्धन पर्वत के झरनों से प्राप्त सुगंधित शीतल जल का द्योतक है, जिससे कृष्ण तथा बलराम पिया करते थे और जिससे अपने पांव और मुख धोया करते थे। गोवर्धन पर्वत शहद, आम का रस तथा पीलू का रस जैसे अन्य पेय भी प्रदान करता है। सूर्यवसा दूर्वा अर्थात दूब घास को बतलाता है, जिससे अर्घ की धार्मिक भेंट दी जाती है। गोवर्धन पर्वत में घास भी होती है, जो सुगंधित मुलायम तथा गौओं की वृद्धि एवं उनमें दूध बढ़ाने के लिए लाभप्रद है। इस तरह यह घास आध्यात्मिक पशुओं के खिलाने के काम आती है। कंदर गुफाओं का सूचक है, जहां कृष्ण तथा बलराम उनके संगी खेलते बैठते और लेटते थे। ये गुफाएं तब आनंद देती हैं जब या तो बहुत सर्दी या गर्मी हो रही हो या फिर वर्षा हो रही हो। गोवर्धन पर्वत में खाने के मुलायम कंद, शरीर सजाने के रत्न, बैठने के लिए समतल स्थान तथा चिकने पत्थर, चमकीले जल और अन्य प्राकृतिक वस्तुओं के रूप में दर्पण तथा दीपक प्रदान करता है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है हमारे आज के विशेष रविवार के प्रातःकालीन सत्र में। शरद पूर्णिमा का महामहोत्सव आज हम मनाने वाले हैं। सबको बधाई हो शरद पूर्णिमा की और इस कार्तिक महीने की। तो गोवर्धन पूजा का उद्घाटन भगवान करना चाहते थे, ये तीसरा कारण, जिसमें भगवान गोवर्धन को पूजनीय आदरणीय बनाए और स्थापित किए हम सब के लिए। तो गोवर्धन जो कि पूजनीय और आदरणीय बने हैं, जिनको भगवान से अभिन्न भी माना है, भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त होने के साथ साथ वो भगवान से अभिन्न भी हैं। तो पिछले कई रविवारों से हम भरत चरितामृत, भरत रामायण के ये एक ऐसे पात्र हैं जिनके विषय में रामायण के टीकाकारों ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। और इस प्रकार की प्रशंसा की है कि चौंकाने वाली प्रशंसा है, क्योंकि उनकी तुलना टीकाकारों ने डायरेक्टली प्रभु श्री राम से की है। जैसे पिछले दफा हमने कहा था कि एक टीकाकार कहते हैं कि यदि 100 राम पैदा होते हैं तो एक भरत पैदा होता है। जब प्रभु श्री राम लक्ष्मण और सीता के साथ भरद्वाज मुनि के आश्रम पहुंचे तो भरद्वाज ऋषि, उन्होंने प्रभु श्री राम का स्वागत किया और उनकी सेवा करी और उन्हें आदेश भी दिया कि इसके पश्चात उन्हें कहां जाना चाहिए। तो भरद्वाज मुनि का सौभाग्य देखिए कि उनके तपोबल के श्रय से साक्षात प्रभु श्री राम उनके चौखट पर आए और उसके पश्चात जब वहां से वो चित्रकूट गए उनके आदेशानुसार, उनके पीछे भरत आए भरद्वाज मुनि के आश्रम में। तो जब भरद्वाज मुनि भरत का स्वागत करते हैं, कुछ ही समय पहले उन्होंने प्रभु श्री राम का स्वागत किया था अपनी कुटिया में, अब वो भरत का जब स्वागत करते हैं तो बहुत ही सुंदर वो भरत की प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन काल में जितनी तपस्या करी है, जितनी सिद्धियां प्राप्त करी हैं, जितने व्रत तप किए हैं, उन सब का श्रेय मुझे प्राप्त हुआ, प्रभु श्री राम का दर्शन मुझे प्राप्त हुआ। तो मेरी सारी तपस्या का निचोड़ प्रभु श्री राम का दर्शन, और प्रभु श्री राम के दर्शन का निचोड़ या प्रभु श्री राम के दर्शन का श्रेय है कि मुझे भरत का दर्शन हो रहा है। ये दर्जा दिया गया है भरत को। इसलिए भरत की तुलना रामायण में भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी से की गई है। ये क्यों? एक दफा गोपियों ने भगवान की बांसुरी से एक प्रकार से द्वेष करते हुए, ईर्ष्या करते हुए पूछा कि तुम में क्या है ऐसा कि हमारे श्याम सुंदर कभी तुम्हारा संग छोड़ते ही नहीं है और हर समय तुम हमारे श्याम सुंदर के अधरों पर बनी रहती हो, क्या है ऐसा गुण तुम्हारे अंदर? तो जब इस प्रकार की शिकायत गोपियां करती हैं बांसुरी के संदर्भ में, तो भगवान बांसुरी का गुणगान करते हुए गोपियों को कहते हैं कि ये बांसुरी को देखो, ये बांसुरी अंदर से अपना कुछ नहीं रखती, ये बांसुरी अंदर से खाली रहती है। यदि बांसुरी अंदर से भरी हुई रहे तो कोई उसे बजा नहीं पाएगा। तो वो अपने आप को अंदर से खाली रखती है ये बांसुरी, ताकि मुझे जो धुन बजानी है मैं वो धुन बजा पाऊं। तो इसलिए इस बांसुरी का सर्वस्व है कि मैं जैसे बजाना चाहूं वैसे ये बजती है, इसलिए ये हर समय मेरे अधरों पर रहती है। वही है रामायण में भरत। तो भरत की तुलना भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी से की गई है। मानो कि प्रभु श्री राम जो स्वयं साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं, वही उनकी बांसुरी साक्षात भरत है, कि वो भी उस बांसुरी के समान जैसे प्रभु श्री राम बजाना चाहते थे वैसे भरत बजे। बांसुरी अपनी कभी कोई धुन नहीं निकालती, जो बांसुरी वादक होता है उसके ताल पर बजती है, वही भरत। तो रामायण में ये जो दो पैर हैं, राम और लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न, तो राम और लक्ष्मण वो निकले
असुरों का वध करने विश्वामित्र मुनि उन्हें ले गए, और उसके पश्चात भी वनवास में भी और राम और लक्ष्मण ने बहुत से असुरों का वध किया, और भरत और शत्रुघ्न वो हर समय पीछे महल में रहे, राम और लक्ष्मण वो फ्रंट पे रहते थे, भरत और शत्रुघ्न वो बैकग्राउंड में महल में रहते थे। तो रामायण के टीकाकार कहते हैं राम और लक्ष्मण वो प्रतिनिधित्व करते हैं कि जब हमें बाह्य असुरों का वध करना है या बाह्य अनर्थों का वध करना है तो राम और लक्ष्मण की शरण ग्रहण करनी है। परंतु जो सबसे खतरनाक असुर अनर्थ होते हैं वो होते हैं हमारे अंदर। तो हमारे अंदरूनी अनर्थों को यदि नष्ट करना है पूर्ण रूपेण तो हमें शरण ग्रहण करनी है भरत और शत्रुघ्न। तो ये दर्जा रामायण के टीकाकार विशेष रूप से श्री वैष्णव आलवार वो भरत और शत्रुघ्न को देते हैं। राम एंड लक्ष्मण दे आर मेंट टू डिस्ट्रॉय द एक्सटर्नल एनिमीज, भरत एंड शत्रुघ्न दे आर मेंट टू डिस्ट्रॉय द इंटरनल एनिमीज। तो हमने ये पूरा जो परिवार है ये पूरा परिवार कैसे एक आदर्श उदाहरण प्रस्थापित कर रहा है ये हम सुन रहे हैं कई रविवारों से। रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस इस संसार में ये दो प्रकार की हैं। फिर जो 12वीं शिक्षा उर्मिला जो कि लक्ष्मण की धर्मपत्नी है वो सिखाती हैं, और पिछले हफ्ते हमने मूड मैनेजमेंट के ऊपर काफी विस्तृत चर्चा करी, मूड मैनेजमेंट इन रिगार्ड्स टू सक्सेस एंड फेलियर। एक तरफ है दिमाग और एक तरफ है हमारा दिल। तो जब हम एक पारिवारिक जीवन जी रहे हैं तो परिवार में दिल लगाना है, और जो व्यवसाय है वहां पर दिमाग लगाना है। उल्टा करने से उल्टा होता है। प्राइड इन सक्सेस, डिप्रेशन इन फेलियर। कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं बन सकता कि वो अपने अतीत को खरीद ले, और कोई भी इंसान इतना गरीब कभी नहीं हो सकता कि अपने भविष्य को न बदल सके। तो यदि अमीरी और गरीबी इसको पहचानना है तो इस तरीके से पहचाने। बैलेंसर्स इन फैमिली विच आर वेरी मच एसेंशियल। इन फैक्ट द मूड मैनेजमेंट ऑफ ईच फैमिली मेंबर इज वेरी मच पर्टिनेंट एंड एसेंशियल। तो हमने उदाहरण ये दंपतियों का लिया, राम और सीता, लक्ष्मण उर्मिला, भरत मांडवी, शत्रुघ्न श्रुत कीर्ति, मेड फॉर ईच अदर। यदि कहा जाए कि लोग बोलते हैं ना रब ने बना दी जोड़ी, तो कई ऐसी आदर्श जोड़ियां होती हैं इस संसार की जिनके विषय में लोग कहते हैं या स्वयं भी कहते हैं कि रब ने हमारी जोड़ी बनाई है। यहां पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं रब की जोड़ी। क्यों ना हम रब की जोड़ी डिस्कस करें। तो राम और सीता परिपूर्णता के उदाहरण है। प्रभु श्री राम परफेक्शन, और परफेक्शन को यदि हैंडल करना है तो सीता चाहिए, साथ में फ्लेक्सिबिलिटी का गुण चाहिए। नहीं तो दोनों परफेक्शनिस्ट यदि हों तो बहुत कुछ दूसरों को भुगतना पड़ता है। तो लक्ष्मण वो गुण को दर्शाते हैं अन इंटरप्टेड सर्विस। 14 साल लक्ष्मण ने बिना रुके, बिना सोए, वो निरंतर राम और सीता की सेवा करते रहे, करते रहे, करते रहे। यहां तक कि जब यहीं पंचवटी में माता सीता ने लक्ष्मण के चरित्र पर शंका करी और प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण की काबिलियत पर, अब ये गौर करने लायक बात है कि ये जो घटना हुई सीता हरण की घटना यहां नासिक में जब हुई तो 13 वर्ष बीत चुके थे वनवास के। वनवास के 13 वर्ष निरंतर सेवा करने के पश्चात मिला क्या लक्ष्मण को इनाम में? क्या मिल रहा है यहां पर? उनके चरित्र के ऊपर लांछन लगाया जा रहा, और वो भी कौन? जो सबसे उनके निकट के आराध्य हैं, सीता देवी। इतना होने के बावजूद लक्ष्मण उसको नजरअंदाज क्यों कर दिए? अक्सर इस संसार में लोग अंदाज के पीछे जाते हैं, हाँ, अंदाज कैसा होना चाहिए अपना अपना, परंतु यदि रिश्तों को निभाना है तो अंदाज के पीछे मत जाइए, नजरअंदाज करते रहिए बहुत सारी चीजों को। एक तरफ है अंदाज, एक तरफ है नजरअंदाज। तो लक्ष्मण इन्होंने नजरअंदाज किया क्यों? क्यों नजरअंदाज किया? उन्होंने देखा कि जो सीता मैया कह रही हैं वो उनके हृदय से नहीं कह रही, और जो प्रभु श्री राम ने भी कहा है वो भी उनके हृदय से उन्होंने नहीं कहा। क्योंकि इतने वर्षों तक, एक तो 13 वर्ष वनवास के और उसके पहले के कितने वर्ष, तकरीबन कुछ 38 से 40 वर्ष जो इन्वेस्टमेंट हुआ है इस रिलेशनशिप में, कौन से रिलेशनशिप में? लक्ष्मण रामचंद्र जी के साथ और सीता के साथ जो इन्वेस्टमेंट हुआ है, उन्होंने उस पर गौर किया। दिस इज कॉल्ड मैच्योरिटी इन एनी रिलेशनशिप। उस पर गौर करते हुए उन्होंने इसको नजरअंदाज किया और अपनी सेवा जारी रखी। इसलिए लक्ष्मण की जो निरंतर सेवा है उसकी तुलना शहद के धार से हुई है। जैसे कि शहद को आप किसी बॉटल से नीचे किसी पतीले में डालो तो उसकी जो धार लगती है वो निरंतर धार लगती है, इसलिए उनकी सेवा उसमें कभी कोई अंतर नहीं आता, निरंतर जैसे कि शहद की धार। हमारी है म्युनिसिपैलिटी का जो नल होता है ना, म्युनिसिपैलिटी के नल को आप ऑन करो पहले आवाज आती बहुत, है ना, ऐसी आवाज आएगी जैसे कि उस नल से बाढ़ आने वाली है, है ना, हम सबका एक्सपीरियंस है। तो कई बार कई डिवोटीज ऐसे होते हैं उनको भक्ति में ऑन करो तो आवाज बहुत करते हैं, जोर से आवाज आएगी, तो म्युनिसिपैलिटी की नल ऐसी जोर से आवाज करती है फिर तर 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 एक एक बूंद गिरता है ऐसे उसमें से। तो लक्ष्मण उस प्रकार से नहीं है, इसलिए वो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं अन इंटरप्टेड सर्विस, और उनकी धर्मपत्नी उर्मिला रिस्पॉन्सिबल डिटैचमेंट। हमने हनुमान जी का उदाहरण लिया था इस संदर्भ में, राम कहे हनुमत पद दीना, हनुमत कहे राम पद लीना। हनुमान जी ने कोई पद नहीं लिया, केवल रामचंद्र जी के जो 2 पग हैं, पद हैं, वही उन्होंने मांगा। इसलिए हनुमान जी को पदान मुक्त कहते हैं, पदान युक्त भी कहते हैं। किसी पद को नहीं लिया परंतु दो पदों से युक्त हनुमान जी। और फिर भरत और मांडवी, अनफ्लिंचिंग डिटर्मिनेशन, अनक्वेश्चन्ड कंसिस्टेंसी। हाल ही में मैं हमारे वृंदावन के जो राधा रमण मंदिर हैं, इसके विषय में पढ़ रहा था। राधा रमण मंदिर वृंदावन का वो 500 साल पुराना है। गोपाल भट्ट गोस्वामी, जो कि उनके आराध्य राधा रमण जी, और उनके नेतृत्व में आज दिन तक वहां की जो पूजा अर्चना चल रही है उनकी लाइन की, जो इतने सबसे ज्यादा, प्रभुपाद ने भी कहा कि यदि डीटी वर्शिप सीखना है तो राधा रमण मंदिर के डीटी वर्शिप को सीखना है स्टैंडर्ड्स। तो राधा रमण जी का जो पर्सनल किचन है, जैसे मदन गोपाल जी का डीटी किचन है अपना, वैसे राधा रमण जी का डीटी किचन है। तो पिछले 500 साल से राधा रमण जी के पर्सनल डीटी किचन का जो चूल्हा है वो जल रहा है। पिछले 500 साल से वो चूल्हे को बुझाया नहीं है उन्होंने, और वो ओरिजिनल चूल्हा जलाया था गोपाल भट्ट गोस्वामी ने, और माचिस लेकर नहीं, उन्होंने पत्थर लकड़ी ये सब लेकर वो चूल्हे को जलाना प्रारंभ किया था। तो जो गोपाल भट्ट गोस्वामी ने 500 साल पहले राधा रमण जी के डीटी किचन का चूल्हा जलाया उसको उन्होंने बुझाया नहीं है, वो निरंतर तब से चल रहा है। तो ये छोटे छोटे उदाहरण हैं जो कि हमें ये बताते हैं कि भगवान की सेवा जो है वो इस प्रकार की होनी चाहिए जिसके अंदर कोई अंतर ना आए। तो भरत, ये लक्ष्मण, मांडवी, उर्मिला, ये सब कुछ सिखा रहे हैं। शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति हमें फाइनली अनपैरलल्ड ह्यूमिलिटी और अनकॉम्प्लिकेटेड ऑनेस्टी। मैं जब राधानाथ महाराज की निजी सेवा में था तो एक उनका कार्यक्रम आयोजित किया था आईआईटी बॉम्बे पवई। तो उस कार्यक्रम में डिवोटीज अलाउड नहीं थे क्योंकि वो रेस्ट्रिक्टेड एरिया सेमिनार हॉल, वहां पर केवल जो फैकल्टी, आईआईटी की फैकल्टी और स्टूडेंट्स, उनके लिए ही प्रोग्राम था। तो केवल मैं एज अ पर्सनल सर्वेंट महाराज के साथ गया था, तो बुक्स भी गए थे, बुक टेबल लगा था। तो सेमिनार हुआ महाराज का, सब स्टूडेंट्स के लिए, फैकल्टी के लिए। सेमिनार के पश्चात एक स्टूडेंट बिल्कुल नया, पहली दफा प्रोग्राम के लिए आया, उसने भगवद गीता खरीदी एज इट इज इंग्लिश में, और वो भगवद गीता महाराज के पास लाया, उसने साइन करो इस पर। महाराज कीनोट स्पीकर थे तो महाराज का सिग्नेचर वो चाहता था। मैं वहीं बगल में खड़ा था परंतु मैं इतने भी पास में नहीं था कि महाराज दिखें, मतलब मैं दिखूं महाराज को, मैं इतने भी पास नहीं था, लेकिन मुझे दिख रहा था जो भगवद गीता उसने महाराज को दी साइन करने के लिए। तो महाराज ने पहला पन्ना, दूसरा पन्ना, और दूसरे पन्ने पर आपने यदि देखा होगा तो भगवद गीता ऊपर लिखी हुई है और बीच में स्पेस पूरा खाली है, और नीचे उस पेज के नीचे लिखा हुआ है फाउंडर आचार्य एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। अब ऑब्वियसली इतना स्पेस बीच का खाली है तो यदि हमें कोई देता साइन करने के लिए तो हम कहां साइन करते, जो इतना बीच का स्पेस है वहीं साइन करते। तो महाराज एक मिनट के लिए सोच रहे थे, मैं देख रहा हूं, परंतु महाराज को पता नहीं कि मुझे दिख रहा है। फिर श्रील प्रभुपाद का जो नाम फाउंडर आचार्य एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उसके नीचे बहुत थोड़ी सी जगह थी, तो महाराज ने प्रभुपाद के नाम के नीचे अपना साइन किया। अब देखिए यह भी छोटी सी बात है, परंतु मुझे ये अब तक बात याद है, क्योंकि महाराज का एक स्पॉन्टेनियस हम्बल नेचर जो लेक्चर में इतना बोलते हैं, कई बार लेक्चर में सुनाना बहुत आसान होता है, पब्लिकली ह्यूमिलिटी दिखाना और भी आसान होता है, परंतु प्राइवेटली उसको प्रैक्टिस करना, टू शो ह्यूमिलिटी इन पब्लिक इज वेरी इजी, स्पेशली इन कलयुग। इन कलयुग एवरीथिंग कैन बी फेक्ड, इवन ह्यूमिलिटी कैन बी फेक्ड, बट टू प्रैक्टिस ह्यूमिलिटी इन प्राइवेट इज समथिंग विच इज द रेयरेस्ट इन कलयुग। तो यहां पर शत्रुघ्न उन्होंने प्राइवेट ह्यूमिलिटी दर्शाई, अनपैरलल्ड ह्यूमिलिटी वॉज अनपैरलल्ड ऑफ शत्रुघ्न, इसलिए उनको यह नाम मिला है कि जो सबसे बड़ा शत्रु है उसका हनन इन्होंने किया। सबसे बड़ा शत्रु है अहंकार, और उन्होंने उस अहंकार का हनन किया। तो मूड मैनेजमेंट में ये चार दंपति हमें ये आठ गुण सिखाते हैं। तो अब हम आते हैं 14th लेसन पर। हमने पिछली बार कंक्लूड किया था हमारी छोटी सी रचना पर, रिश्तों को निभाना है तो बलिदान करना होगा, एक खून है तो एक को पानी होना होगा, क्योंकि खून यदि साफ होता है तो केवल पानी से, वरना खून का खून से मिलन तो घाव कहलाता है। ये जो शब्द है ना बलिदान, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। आपको पता है ये बलिदान पहले शब्दकोश में नहीं था, ये शब्द बलि महाराज के लीला के पश्चात ये बलिदान शब्द आया है, क्योंकि बलि महाराज ने अपने उदाहरण से अपने आप को बलि चढ़ा दिए, और जो उन्होंने दान दिया अपने स्वयं के जीवन का, सर्वस्व का दान दिया, तो बलि ने जो दान दिया ये दोनों से मिलकर बना है शब्द बलिदान। तो अब जो 14वां लेसन 14th लेसन, अब इन सब रामायण में इन माताओं का लिस्ट यदि हम देखें, सीता, उर्मिला, मांडवी, श्रुत कीर्ति, सुमित्रा, कौशल्या, तो रामायण के टीकाकार वो प्रभु श्री राम के जो ऐसे पार्षद हैं, इंग्लिश में यदि कहें द अनसंग हीरोज, इनको क्या कहा गया है, ये ऐसे महाजन हुए हैं जिन्होंने, जिनके विषय में साधारण जनता नहीं जानती। हाँ, थोड़ा बहुत अब नाम भी इनके, ये सब जैसे मांडवी, उर्मिला, श्रुत कीर्ति, थोड़ा बहुत कुछ टीवी सीरियल में प्रोमिनेंट नाम जो आ जाते हैं वो थोड़े बहुत याद रखते हैं, परंतु नाम भी याद नहीं, उनके गुण और उनके पीछे क्या उन्होंने आदर्श प्रस्थापित किया है। तो यदि केवल इन माताओं का लिस्ट हम लें तो रामायण के टीकाकार इन सब के विषय में कहे हैं, ये 14th लेसन, नॉट ऑल हीरोज हैव बिग मसल्स। हमारा दृष्टिकोण क्या है, कोई हीरो या हीरोइन कौन ऐसा होना चाहिए जो बहुत ऐश्वर्यशाली, दिखने में एकदम इंप्रेसिव अट्रैक्टिव, जिसको कहते हैं ना धांसू, धांसू होना चाहिए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंती को छाया न मिले फल लागे अति दूर। तो इस संसार में कोई यदि बड़ा है, सब कुछ उसका नाम बड़ा है, शोहरत बड़ी है, धन संपत्ति बहुत बड़ी है, तो उसको लोग हीरो मानते हैं। परंतु रामायण जैसे ग्रंथ जिसके अंदर जो मुख्य किरदार या अभिनय प्रभु श्री राम का है, जैसे कि हम पिछले बुधवार को दशहरे के उस प्रवचन में कह रहे थे कि रामायण का अर्थ है राम का आयन, राम का निवास स्थान। परंतु रामायण के टीकाकार उस प्रकार से टीका नहीं लिखते, वो कहते हैं रमा का आयन, सीता, रमा अर्थात सीता। तो रामायण के मेन हीरो उनको उन्होंने सीता, यहां तक कि मंदोदरी का गुणगान इतना किया है, रावण की पत्नी का गुणगान इतना किया गया है, और बाकी ये सब कुछ। तो ये इसलिए ताकि हमारा जो कलयुगी कंसेप्शन है, कलयुगी कंसेप्शन क्या है, बस सब कुछ इंप्रेसिव अट्रैक्टिव बिग, जब तक कि वो नहीं तब तक हम उसको हीरो नहीं मानते। जैसे समंदर, समंदर के विषय में कहा है, समंदर को इतनी सी बात खल गई, समंदर को इतनी सी बात खल गई, मेरे ऊपर कागज की नाव कैसे चल गई। अब चाहे समंदर कितना भी बड़ा विशाल हो, कागज की नाव उस समंदर के सामने कितनी सी है, परंतु हर समय समंदर के ऊपर ही रहेगी वो। चाहे कितनी भी लहरें उस नाव को भिगो दे, कागज की कश्ती को, परंतु वो कागज की कश्ती, वो कागज की नाव हर समय समंदर के ऊपर ही तैरती रहेंगी। परंतु समंदर को ये बात खल जाती है कि ये नाव इतनी सी दो कौड़ी की मेरे ऊपर कैसे चल गई। तो कभी भी जब हम रामायण जैसे ग्रंथों का अध्ययन करते हैं तो हमें बारीकी से ऐसे जो आदरणीय पात्र हैं, पूजनीय जो पात्र हैं, जैसे प्रभु भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को आदरणीय बनाया, वृक्षों को आदरणीय कहा वृंदावन के। एक बहुत बड़ी आइस फैक्ट्री थी और इस आइस फैक्ट्री का जो मालिक सीईओ एक दिन ऑफिस आवर्स के बाद वो इंस्पेक्शन पर निकला था, उसके पूरे आइस फैक्ट्री का इंस्पेक्शन पर निकला था, और वो गलती से जो उस आइस फैक्ट्री का रेफ्रिजरेशन सेक्शन है उसमें बंद हो गया, वो ऑटो लॉक। अब ऑफिस आवर्स के बाद की बात है, कोई भी नहीं वहां पर, और ये अब सोचो आइस फैक्ट्री का रेफ्रिजरेशन किस दर्जे का होता है। तो यहां पर अब जो भी वो बाकी ऑफिस वाले वो सब आएंगे दूसरे दिन, तो पूरे रात भर ये यहां पर बंद रहेगा। तो अब इसे तो यही लगा कि ये मेरा आखिरी दिन या मेरी आखिरी रात है, परेशान बैठा हुआ अंदर उस रेफ्रिजरेशन सेक्शन में। आधे घंटे बाद एक व्यक्ति ने वो उसका दरवाजा खोला, तो इसे आश्चर्य हुआ कि ये व्यक्ति, इसको कैसे पता चला कि मैं अंदर बंद हूं। और ये व्यक्ति कौन था? ये व्यक्ति उसी की कंपनी का सिक्योरिटी था, बहुत छोटा सा एक एम्प्लॉय, तुच्छ जिसको कहेंगे, वॉचमैन, जिसको इस कंपनी का सीईओ भी पर्सनली नहीं जानता था, ये भी नहीं जानता था कि ये मेरी कंपनी का वॉचमैन है। तो इसने इसे पूछा कि तुम्हें कैसे ये आशंका हुई कि मैं यहां पर अंदर बंद हो चुका हूं? तो इसने कहा, सर आपके जाने का टाइम शाम के 6 बजे का, आप अपनी कार में निकलते हो, और उनकी कार कैसी होती है? बड़ी काली आलीशान कार जिसके शीशे भी काले। तो 6 बजे जैसे ही आपकी कार गेट से निकलती है, मैं हर समय सल्यूट मारता हूं, और इसके सल्यूट को ये सीईओ ने कभी देखा नहीं, ये जानता भी नहीं था कि ये वॉचमैन मेरे ही कंपनी का है। तो इसने कहा, आज मैंने देखा 6 बज गए, 6:15 बज गए, मालिक की गाड़ी नहीं आई, मेरा सल्यूट मैंने नहीं दिया। जब 6:30 बज गए तो मुझे लगा कुछ गड़बड़ है, तो मैं आया चेक करने के लिए, आपकी गाड़ी पार्क थी, आप नहीं दिख रहे थे, तो चेक करने के लिए फिर मैंने ये दरवाजा खोला। तो मैनेजमेंट कॉर्पोरेट सेमिनार्स में हम ये स्टोरी सुनाते हैं, नेवर अंडर एस्टिमेट इवन द मोस्ट इनसिग्निफिकेंट पीपल इन योर कम्युनिटी, दे माइट सेव योर लाइफ। ये लेसन इस आइस फैक्ट्री के सीईओ ने सीखा। तो हां, लग रहा होगा कि अरे ये तो सब स्त्रियां हैं, जनरली स्त्रियां जो हैं वो पुरुषों के मुकाबले बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं करती हैं। हम लोग यहां पर उस सदी की बात कर रहे हैं, त्रेता युग की बात कर रहे हैं। तो आज भी यदि देखिए, जो थॉमस अल्वा एडिसन हुए, इतने बड़े वैज्ञानिक, लाइट बल्ब का आविष्कार जिन्होंने किया, तो उनके जीवन की यह सच्ची घटना है। एडिसन, थॉमस एडिसन, जब वो स्कूल गोइंग किड थे, बच्चे स्कूल जाने वाले, अब स्कूल जाना शुरू ही किया था उन्होंने, तो उनके क्लास टीचर ने एक नोट उनके हाथ भिजवाया कि तुम्हारे मां को ये नोट दे देना। तो वो छोटे से थे, वो जानते नहीं थे लिफाफे में क्या नोट है, क्या लिखा हुआ है, वो जाकर उन्होंने अपनी मां को वो नोट दे दिया। तो उनकी मां वो नोट पढ़ते हुए, उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो इसने पूछा, क्या लिखा है इस पर? तो मां ने कहा, तुम्हारी क्लास टीचर ने लिखा है तुम्हारे बारे में। क्या लिखा है मेरे बारे में? क्लास टीचर ने लिखा है, योर सन इज टू मच ऑफ अ जीनियस फॉर अवर स्कूल टू हैंडल। बहुत बुद्धि, बहुत इसके अंदर तीक्ष्ण बुद्धि है, इतना बड़ा जीनियस है, हमारे स्कूल से हैंडल नहीं हो पाएगा ये, आप कृपा इसको घर पे होम स्कूलिंग दीजिए, ही इज टू गुड टू बी हैंडल्ड बाय आर स्कूल। तो छोटे से थॉमस एडिसन, वो उनको बहुत अच्छा लगा ये सुनकर, तो स्कूल से निकालकर अब इनकी मां ने इनको घर पर ही होम स्कूलिंग किया। आगे चलकर ये इतने बड़े वैज्ञानिक बने, इनकी मां गुजर गई, ये बड़े हो गए, इनको इतने अवार्ड्स मिले, और एक दफा ये उनके एटिक को साफ कर रहे थे घर के, तो वहां पर एक बक्से में उन्होंने वही बचपन का वो क्लास टीचर का दिया हुआ नोट उस बक्से में पड़ा हुआ था। तो उनको याद आया, तो उन्होंने वो नोट निकाला और जो उस नोट पे लिखा था उन्होंने पढ़ा, तो अब इनकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उनके मां ने झूठ पढ़कर बोला थॉमस एडिसन को। वो क्लास टीचर ने उस नोट में क्या लिखा था, एक्चुअली ये लिखा था, योर सन इज गुड फॉर नथिंग, तुम्हारा जो बेटा है किसी काम का नहीं है, और इतना ज्यादा वो डफर है कि वो हमसे हैंडल नहीं होता, आप उसको घर पर ही रखो, वो यदि घर के कुछ काम सीख ले वही बहुत है, ये उस नोट पे लिखा हुआ था। लेकिन उनके मां ने उसको किस प्रकार से ट्रांसलेट कर पढ़ा, और फाइनली जो जितने उनके अवार्ड्स थे उन्होंने पब्लिकली जाके फिर अनाउंस किया कि वॉट एवर आई एम इन माई सक्सेसफुल साइंटिफिक लाइफ आई गिव ऑल क्रेडिट टू माई मदर, शी इज द रीजन फॉर माई रियल सक्सेस। हम देखते हैं ध्रुव महाराज, जब उन्हें सफलता प्राप्त हुई, मृत्यु मूर्तिमान मृत्यु पर अपने कदम रखकर उन्होंने वैकुंठ विमान पर चढ़ाई की, और उस समय अपनी माता सुनीति के विषय में उन्होंने पूछा, तो उनकी माता सुनीति उनसे पहले वैकुंठ विमान में बैठकर जा रही थी। हम भगवान श्री कृष्ण जो अनुमोदन करते हैं देवकी, इसलिए कई भागवत के टीकाकार देवकी का गुणगान या देवकी का बलिदान यशोदा से ज्यादा बताया गया है। शची माता जो कि चैतन्य महाप्रभु की मां बनी, देवहूति जो कि भगवान कपिल देव की मां बनी, तो ये सभी जो माताएं हैं, सुनीति, देवकी, देवहूति, शची माता, इन सब की भूरी भूरी प्रशंसा हुई है हमारे शास्त्रों में। हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे तो वो बता रहे थे कि जब वो 1971 का वॉर लड़ रहे थे पाकिस्तान के साथ, तो उनकी पूरी बटालियन फ्रंट पर बुलाई गई थी, तो पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर फ्रंट पर उनकी पूरी बटालियन को बुलाया गया, वॉर चल रहा है। तो इनकी मां, इन्होंने कहा कि मैं भी आना चाहती हूं, तो पूरे बटालियन वहां पर उन्होंने पूछा कि मैडम आप क्या करेंगे, वहां पर तो पूरा वॉर सिचुएशन है और सब जगह गोलीबारी चल रही होगी, आपका क्या योगदान होगा। तो उन्होंने पूरी बटालियन को, विशेष रूप से अपने बेटे को कहा कि हां मैं वहां पर किसी दुश्मन के ऊपर गोली नहीं चला सकती, उस प्रकार से मेरा कोई भी योगदान नहीं होगा, परंतु कम से कम मैं तुम जवानों के लिए खाना तो बना सकती हूं, तो मैं अपना योगदान जो मेरी काबिलियत है, मेरी जो मेरा जो कोर कॉम्पिटेंस है वो है खाना बनाना, तो कम से कम मैं वो तो कर सकती हूं तुम लोगों के लिए, तो उसके द्वारा तो मेरे देश की सेवा होने दो। और हालांकि उनके रूल्स के अगेंस्ट था, लेकिन उनके जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनसे उन्होंने परमिशन लिया और अलाउ किया इनकी मां को फ्रंट लाइन पर, ये सारे बटालियन, पूरे बटालियन के लिए रोज वॉर के समय खाना बनाने के लिए। जैसे मैंने एक दफा पहले भी कहा था, हमारे सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने जब इंडियन नेशनल आर्मी का फॉर्मेशन किया और भर्ती चल रही थी, इंडियन नेशनल आर्मी की भर्ती चल रही थी, उस समय एक अपाहिज व्यक्ति वो आए और उन्होंने कहा कि मैं इंडियन नेशनल आर्मी में भर्ती होना चाहता हूं आपके। तो सभी देख रहे थे ये अपाहिज व्यक्ति, इनका क्या योगदान रहेगा इस युद्ध में या वॉर में, आर्मी में। तो इनको जब पूछा गया, नेताजी बोस, इन्होंने पूछा कि भाई आपको गोली चलानी आती है, आप क्या युद्ध करोगे, क्या योगदान आपका रहेगा। तो इस अपाहिज व्यक्ति ने कहा, जो चल भी नहीं पा रहा था, उसने कहा कि हां मैं दुश्मन के छाती में गोली तो नहीं दाग पाऊंगा, परंतु दुश्मन की एक गोली तो अपनी छाती पर लेकर कम कर सकता हूं, ये मेरा योगदान। आई मे नॉट बी एबल टू शूट अ बुलेट बट आई कैन टेक अ बुलेट एंड देयर विल बी वन बुलेट लेस इन द गन्स ऑफ द एनिमीज। नॉट ऑल हीरोज हैव बिग मसल्स। हमारे इस्कॉन के जयद्वेत महाराज को एक बार हम लोगों ने पूछा था। अब जयद्वेत महाराज इस्कॉन में एक ऐसे सन्यासी हैं जो बहुत ही फिलोसॉफिकल हैं, नॉन इमोशनल हैं और बहुत स्ट्रिक्ट सन्यासी माने जाते हैं। तो उनको हमने पूछा, महाराज व्हाट डू यू थिंक इस्कॉन needs the most now after so many years ISKCON has become so big, what do you think ISKCON needs the most? Imagine Jayadeet Maharaj ne turant spontaneously kaha ISKCON needs grandmothers, we need grandmothers, enough of managers, enough of big leaders, enough of big preachers, enough of achievers। और फिर उन्होंने कहा, जस्ट लाइक इन योर इंडियन फैमिलीज, योर इंडियन जॉइंट फैमिलीज ऑलवेज द ग्रैंड मदर्स, दे माइट नॉट बी द अचीवर्स बट दे आर द कीपर्स ऑफ द फैमिली, दे कीप द फैमिली टुगेदर। हाउ? बाय गिविंग दैट इमोशनल सपोर्ट, दैट लव। तो उन्होंने कहा, इस्कॉन के अंदर हम बहुत स्किलफुल हो गए हैं हर मामले में, परंतु ग्रैंड मदर्स की कमी होने के वजह से वो जो प्रेम है, वो जो इमोशनल सपोर्ट है, वो नहीं मिल रहा है। इसलिए उन्होंने कहा, वी नीड मोर ग्रैंड मदर्स। तो इसके विषय में मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद के जो शिष्य हुए, दोनों हुए, जो मेल डिसाइपल्स और फीमेल डिसाइपल्स दोनों हुए प्रभुपाद के, तो इतने 50 सालों में यदि आप आंकड़े निकालो तो जो मेल डिसाइपल्स हैं प्रभुपाद के, वो बहुत से इस्कॉन छोड़ दिए। तो यदि उनका लिस्ट निकालो कि कितने मेल डिसाइपल्स प्रभुपाद के इस्कॉन छोड़ दिए हैं और फीमेल डिसाइपल्स प्रभुपाद के, तो बहुत कम हैं, इक्के दुक्के कोई होंगे फीमेल डिसाइपल्स प्रभुपाद के जो इस्कॉन को छोड़े हैं। मैक्सिमम ऑफ हु हैज लेफ्ट इज ऑल द मेल डिसाइपल्स ऑफ प्रभुपाद। और प्रभुपाद ने इसलिए उनके स्वयं के जीवन में, जीवन काल में, उन्होंने उनके फीमेल डिसाइपल्स को जो दर्जा दिया, कई बार उनके मेल सन्यासी डिसाइपल्स को भी ऐसा दर्जा नहीं दिया। जैसे लीलावती माताजी, प्रभुपाद के एक सीनियर इनिशिएटेड डिसाइपल, तो वो अमेरिका के एक मंदिर में एक सिंपल, जैसे कि किसी भी कांग्रीगेशन में कोई एक सिंपल सी माताजी होती हैं, अपनी सेवा करती रहती हैं, कोई बड़े पोस्ट पर नहीं है, कोई बड़ी प्रीचर नहीं है, वैसी लीलावती माताजी। तो प्रभुपाद आए और प्रभुपाद का वेलकमिंग हुआ, बड़े बड़े जो प्रभुपाद के सन्यासी डिसाइपल्स वो लोग प्रभुपाद का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, प्रभुपाद ने पूछा वेर इज लीलावती, आई एम नॉट सीइंग हर। तो सबसे पहले वो आश्चर्यचकित हो गए कि अभी हम लोग प्रभुपाद का बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हमारे किसी प्रोजेक्ट के बारे में प्रभुपाद ने पूछा नहीं, ये लीलावती के बारे में क्या पूछ रहे हैं। उनको पता भी नहीं था, कईयों को तो पता भी नहीं था कि ये कौन है। फिर एक ने, एक सन्यासी डिसाइपल ने कहा, प्रभुपाद आई हैव हर्ड दैट शी इज सिक एंड शी इज इन द हॉस्पिटल। तो प्रभुपाद बोले, यू हैव हर्ड, यू सेड यू हैव हर्ड, यू डिडंट गो सी हर। तो उन्होंने कहा, नो प्रभुपाद, वी वर बिजी राइट नाउ, विच हॉस्पिटल, राइट नाउ वील गो। तो सारे सन्यासी डिसाइपल्स को प्रभुपाद साथ में लेकर गए। वो लीलावती माताजी जिस हॉस्पिटल में एडमिट थी, उस हॉस्पिटल में वो माताजी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, एक तो प्रभुपाद आएंगे उनको देखने के लिए, और प्रभुपाद के साथ प्रभुपाद अपने सारे सीनियर सन्यासी डिसाइपल्स को लाएंगे। हाउ आर यू, हु इज टेकिंग केयर ऑफ यू, व्हाट अबाउट योर प्रसादम, सब ये सब सारे क्वेश्चंस। और सारे जो प्रोजेक्ट्स रिपोर्ट लेकर ये सन्यासी डिसाइपल्स वेट कर रहे थे, प्रभुपाद ने क्या बताया उनको, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। सर्वेश्वरी माताजी, एक और प्रभुपाद डिसाइपल, वो प्रेग्नेंट थी और वो रात को, उनकी सेवा थी प्रभुपाद के लिए दूध गर्म कर उनके कमरे में रखना, और वो भी प्रभुपाद के आने से पहले। प्रभुपाद एकदम गर्म नहीं पीते थे, तो उसको थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं गुनगुना सा बनाकर उसको प्रभुपाद के कमरे में रख देना। तो हुआ क्या कि वो प्रभुपाद के कमरे में रख देती थी, प्रभुपाद बाद में आकर दूध पी लेते थे। तो उस दिन प्रभुपाद जल्दी आ गए अपने कमरे में और उन्होंने देखा ये सर्वेश्वरी माता जी वो दूध रख रही। तो प्रभुपाद ने देखा, यू आर प्रेग्नेंट? तो उन्होंने कहा, यस प्रभुपाद, व्हाट आर यू हैविंग फॉर योर बेबी? तो बोली कि व्हाट एवर प्रसाद, टेम्पल प्रसाद आए हैं। प्रभुपाद ने पूरा दूध का ग्लास, टेक दिस, ड्रिंक दिस, यू शुड हैव नरिशिंग मिल्क एवरी डे। बोले, नो प्रभुपाद, दिस इज फॉर यू, आई एम नॉट प्रेग्नेंट। तो ये माताजी, अभी ये बहुत छोटा सा इंटरेक्शन था, लेकिन ये माताजी ये अपनी मेमोरीज में कहती हैं कि मैंने प्रभुपाद से इनिशिएशन लिया, प्रभुपाद की बुक्स पढ़ी, प्रभुपाद के लेक्चर्स इतने सुने, लेकिन ये जो मेमोरी है, प्रभुपाद ने अपने खुद का स्वयं के उनके जो कोटे का दूध है, क्या दूध की कमी थी क्या? हाँ, प्रभुपाद बोल सकते थे दूसरे सर्वेंट को, एक और दूध का ग्लास बनाओ, इनको पिलाओ, लेकिन वो एक जो जेस्चर अपने स्वयं के दूध के ग्लास को उनको बोला कि यहीं पे पियो, ड्रिंक इन फ्रंट ऑफ मी, और फिर कहा, लाइक दिस यू शुड ड्रिंक एवरी डे। सबसे ज्यादा जो रोंगटे खड़े करने वाली इस पास टाइम है प्रभुपाद की, फर्स्ट टाइम प्रभुपाद मायापुर अपने वेस्टर्न डिसाइपल्स को लेकर आते हैं, और प्रभुपाद के गॉड ब्रदर्स, प्रभुपाद के गॉड ब्रदर्स कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के सन्यासी डिसाइपल्स। सोचो, सरस्वती ठाकुर जो कि एकदम कड़क सन्यासी, उनके सन्यासी डिसाइपल्स प्रभुपाद को मिलने के लिए आते हैं कि प्रभुपाद ने जो इतनी कामयाबी हासिल करी, और प्रभुपाद प्रसाद अरेंज करते हैं इन सन्यासी डिसाइपल्स का, इनके गॉड ब्रदर्स हैं प्रभुपाद के वो, और सर्विंग के लिए मालती माता जी को लगाते हैं। कौन है ये? अमेरिकन प्रभुपाद की शिष्या, जिनकी उम्र कुछ मेरे ख्याल से 20-25 साल की कुछ होगी। तो मालती माता जी को अजीब लग रहा था कि ये सन्यासी प्रभुपाद के गॉड ब्रदर्स, उनको मैं सर्विंग करूंगी? प्रभुपाद ने कहा यस यू शुड सर्व। और ये सारे सन्यासी डिसाइपल्स एक दूसरे को देख रहे हैं कि यह अभय चरण कर क्या रहा है, इसको क्यों लगाया है सर्विंग करने के लिए। और वो पूरा अपना सर ढके हुए, पल्लू लिए हुए, शर्माते हुए सर्विंग कर रही है। तो प्रभुपाद ने देखा वो एकदम शर्मा शर्मा के हाथ उसके कांप रहे सर्विंग करते समय इन सन्यासी डिसाइपल्स को। और फिर प्रभुपाद इन सन्यासी डिसाइपल्स को कहते हैं, सो शी इज मालती माय सीनियर डिसाइपल एंड व्हाट अबाउट हर, हर क्वालिटी इज सच, इफ आई आस्क हर टू स्लिट हर थ्रोट राइट नाउ, यदि मैं अभी कहूं मालती अपना गला काटो मेरे लिए, शी कैन स्लिट हर थ्रोट फॉर मी राइट नाउ। वो सन्यासी डिसाइपल खाते खाते उनका निवाला उधर ही रुक गया कि जनरली कृष्णा बुक पढ़ते हैं प्रसाद खाते समय, ये क्या बोल रहे हैं ये। प्रभुपाद ने पहले ये कहा, यदि मैं मालती से कहूं कि मेरे लिए मालती तुम गला काटोगी अपना, वो काट देगी। और यदि मालती मुझे कहे तो मैं भी मेरा गला काट दूंगा इसके लिए। अब तो जो भी थोड़ा बहुत प्रसाद था वो अपचन हो गया होगा उनको। तो जो प्रभुपाद ने इनको ये दर्जा दिया, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेसन, रामायण के ये जो पात्र हैं, दीज आर द अनसंग नॉन मस्कुलर हीरोज। कोई डोले शोले नहीं, कोई उन दिखावट नहीं उनके अंदर, लेकिन जो वास्तविक रामायण के मर्म को जानने वाले, उन्होंने ये स्टैंडर्ड प्रस्थापित किया और उन्होंने इनको ये दर्जा दिया। तो आज हम एक और ऐसे अनसंग हीरो, हालांकि ये काफी प्रसिद्ध हुई लेकिन इस्कॉन में हम इतना नहीं सुनते इनके विषय में। बहुत साल पहले मैंने मीराबाई का चरित्र पढ़ा था इस्कॉन में आने से पहले, तो मैंने सोचा कि ये जो लिस्ट है रामायण की लिस्ट, यदि इनकी तुलना में हम अभी हमारे कलयुग में भगवान श्री कृष्ण की एक ऐसी अनन्या भक्त हुई जिनका कनेक्शन श्रीमती राधारानी से भी है, तो मीरा के भजन, मीराबाई के विषय में महाराष्ट्र में इतना नहीं सुना होगा आप लोगों ने, वो राजस्थान नॉर्थ में मीराबाई ज्यादा प्रसन्न हुई, ज्यादा प्रसिद्ध हुई। तो मीराबाई वो एक राजघराने की थी, राठौर परिवार की, राजघराने की थी वो, इसलिए वो भजन में है ना, महलों में पली बनके जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहानी लगी। तो वो महलों में पली बड़ी और फिर उनका विवाह हुआ इस राजा से जिनका नाम था कुंवर भोजराज। तो कुंवर भोजराज इनके विषय में बताया गया है। अब मीराबाई के विषय में आप लोगों ने सुना होगा, परंतु इनके जो पति हुए कुंवर भोजराज, इनके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं। तो कुंवर भोजराज को एक दफा मीराबाई कहती हैं कि देखिए आपने मुझसे विवाह तो किया, परंतु एक जो पत्नी होती है अपने पति को जो सुख देती है, पति की जो सेवा करती है, वो मैं आपको नहीं दे पाई, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप दूसरी शादी कर लो। और वो जो आपकी दूसरी पत्नी पत्नी होगी, मैं उसकी सेवा करूंगी, तो उसके द्वारा आप संतान उत्पत्ति भी कर पाओगे, आपका वंश आगे बढ़ेगा और मेरा जीवन तो बिल्कुल अलग है। तो जब कुंवर भोजराज ने यह सुना तो उनकी आंखों में आंसू आ गए और फिर वो याद करने लगे कि उन्होंने मीराबाई से विवाह क्यों किया था। कुंवर भोजराज वो मीराबाई को बचपन से जानते थे, तो जो इनकी बुआ थी, किनकी, कुंवर भोजराज की जो बुआ, उनके पिता का नाम राजा संग्राम सिंह, कुंवर भोजराज के पिता का नाम राजा संग्राम सिंह, और राजा संग्राम सिंह की जो बहन वो मीराबाई की ताईजी भी थी। तो इस नाते कुंवर भोजराज वो मीराबाई को बचपन से जानते थे, तो वो इतना बचपन से मीराबाई से आकर्षित थे कि उन्होंने निश्चित कर लिया था कि मैंने विवाह करना है तो इसी से करना है। तो कुछ वर्ष मीराबाई को ऑब्जर्व करने के पश्चात कुंवर भोजराज ने मीराबाई को कह दिया कि मुझे तुमसे विवाह करना है। उस समय मीराबाई कही, देरी हो गई, मेरा विवाह तो ऑलरेडी हो चुका है। सपने में मीराबाई ने गिरधर गोपाल के साथ विवाह कर लिया था और वो सुहागन अपने आप को मानती थी, गिरधर गोपाल की सुहागन मानती थी। उन्होंने कहा कि मेरा विवाह तो उनके साथ हो चुका है, आप लेट हो गए। तो कुंवर भोजराज वो इस बात को भी जानते थे कि ये अनन्य भक्त हैं गिरधर गोपाल की, तो उन्होंने मीराबाई से कहा कि देखो, मैं जानता हूं, मैं क्यों कह रहा हूं कि मुझे फिर भी विवाह करना है तुमसे, क्योंकि तुम्हारे जो माता पिता हैं वो तुम्हारा विवाह किसी दूसरे पुरुष से करने ही वाले हैं, उससे तो तुम बच नहीं सकती, और वो जो भी पुरुष होगा वो कभी स्वीकार नहीं करेगा तुम्हारे इस कृष्ण भक्ति को और तुम्हारे इस गिरधर गोपाल के साथ विवाह करने को, वो कभी स्वीकार नहीं करेगा। यदि जितने पुरुष वर्ग हैं इस पूरे मेवाड़ में, उसमें से केवल मैं हूं जो तुम्हारी कृष्ण भक्ति में कभी अवरोध नहीं डालूंगा, कभी अवरोध नहीं डालूंगा, तो देखो तुम्हारे सामने मैं जो प्रस्ताव रख रहा हूं तुम्हारे ही भले के लिए है, तुम्हारे भविष्य के भले के लिए है। तो मीराबाई ने सोचा, काफी सोचा, कई दिन बीते, फिर मीराबाई को जब फिर से पूछा कुंवर भोजराज ने, क्या सोचा तुमने, तो मीराबाई ने कहा, ठीक है, मैं आपसे विवाह करूंगी परंतु मेरी एक शर्त है। कुंवर भोजराज ने कहा, जो भी तुम्हारी शर्त है मैं स्वीकार करता हूं। मीराबाई ने कहा, मेरी शर्त यह है, मेरी आज्ञा के बिना मेरे तन को तुम स्पर्श नहीं करोगे, ये मेरी शर्त है। कुंवर भोजराज ने कहा, स्वीकार है, ये तुम्हारी शर्त मुझे स्वीकार है। तो इनका विवाह हुआ और कुंवर भोजराज हर समय मीराबाई को एब्जॉर्ब्ड दूसरे ख्यालों में बातें करती रहती थी। वो अपने गिरधर गोपाल से अलग मंदिर बनवाया गिरधर गोपाल का मीराबाई के लिए, और जो उन्होंने प्रण लिया था, जो प्रॉमिस दिया था, उसको ठीक ठीक उन्होंने निभाया। तो राजा संग्राम सिंह और कुंवर भोजराज जब तक जीवित थे तब तक मीराबाई की भक्ति में कोई अवरोध नहीं आया था। वो जो मीराबाई के पदों में है ना, राणा ने विष दिया, वो राणा संग्राम सिंह नहीं है बल्कि कुंवर भोजराज के भाई विक्रम सिंह, उन्होंने बाद में बहुत कठिनाइयां दी मीराबाई को जब कुंवर भोजराज गुजर गए। तो एक दिन मुसलमानों से युद्ध करने के लिए कुंवर भोजराज को जाना पड़ा और वो इतना घायल हो गए केवल उनकी जान बची इतना ही काफी था, बाकी उनका पूरा शरीर खून से लथपथ और इतने घाव सब जगह पर उनका शरीर फट चुका था। ऐसी घायल अवस्था में उनको उठाकर लाया गया और वैद्य ने कहा कि इनके घाव इतने ज्यादा गहरे हैं और इतने ताजे हैं कि इनको हम सी भी नहीं सकते। तो केवल वैद्य ने पट्टी बांध दी थी, पट्टी बांधी हुई ये इनके जो घाव और ऐसे वो अपने चारपाई पर लेटे हुए हिल भी नहीं पाते थे वो। तो ऐसी अवस्था में उनको हाथों से खिलाना पड़ता था। तब फिर मीराबाई वो अपने पति की सेवा कर रही थी। तो वो एक दिन वो सेवा कर रही हैं, कुंवर भोजराज वहां पर उनका भोजन हो गया, वो चारपाई पर लेटे हुए हैं, बगल में मीराबाई, अचानक मीराबाई वो ध्यानस्थ हो जाती हैं और उनके ध्यान में राधा श्याम सुंदर की रासलीला। आज क्या है? शरद पूर्णिमा। तो रासलीला उनके ध्यान में प्रकट होती है और उस रासलीला में मीराबाई उनका जो निज रूप है वो है माधवी गोपी का रूप। उनका नाम है माधवी गोपी। तो माधवी गोपी के अपने निज रूप में वो राधा रानी को असिस्ट कर रही है श्याम सुंदर की रासलीला में, और श्याम सुंदर अंतर्धान हो जाते हैं और सभी गोपियां ढूंढ रही हैं, सभी गोपियां ढूंढ रही हैं, विशेष रूप से श्रीमती राधा रानी ढूंढ रही हैं। और ज्यादातर होता क्या कि जब भी श्याम सुंदर वो तिरोहित हो जाते, अंतर्धान हो जाते, तो राधा रानी उनको बांसुरी बजाने के लिए कहती और जिस दिशा में बांसुरी की धुन की आवाज आती उस दिशा में जाकर वो ढूंढ लेती श्याम सुंदर को। तो वो पुकार रही हैं श्याम सुंदर को, बांसुरी बजाने के लिए बोल रही राधा रानी, और श्याम सुंदर इस प्रकार की बांसुरी बजाए कि जिसकी धुन चारों ओर से सुनाई दे रही है। तो कंफ्यूज्ड सारी गोपियां श्रीमती राधा रानी कंफ्यूज्ड कि श्याम सुंदर है कहां, कैसे पता लगाया जाए। उस समय मीराबाई जो कि माधवी गोपी के रूप में, उन्होंने ध्यान कीर्तन प्रारंभ किया। मीराबाई प्रसिद्ध थी ध्यान कीर्तन करने में, तो उन्होंने ध्यान कीर्तन जब प्रारंभ किया तो उनका ध्यान कीर्तन इतना तीव्र हुआ कि श्याम सुंदर अपनी बांसुरी बजाना भूल गए और वो बांसुरी जो हर समय श्याम सुंदर के अधरों पर रहती है वो बांसुरी धीरे धीरे उनके अधरों से नीचे आने लगी और निकुंज में छिपे श्याम सुंदर वो सोचने लगे कि ये कैसा अद्भुत ध्यान कीर्तन है इस माधवी गोपी का कि मुझे जैसे चुंबक की तरह खींचे चला जा रहा है, मैं खींचे चला जा रहा हूं। और तुरंत श्याम सुंदर सबके सामने आ गए। इसलिए मीराबाई के विषय में कहा गया है ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है। इनके विषय में बताया गया है ध्यान घनश्याम का दीवाना बना देता है, दिल गोकुल तो कभी बरसाना बना देता है। इस प्रकार से उनका ध्यान कीर्तन हुआ करता था। अच्छा, अब हम स्टोरी में जा रहे हैं। कुंवर भोजराज मूर्छित घायल अवस्था में चारपाई पर पड़े हुए हैं, मेरा भाई इस मेडिटेशन में माधवी गोपी, और भगवान माधवी गोपी को दर्शन देकर फिर से दौड़ने लगते हैं। तो अब माधवी गोपी और श्रीमती राधा रानी भाग रही हैं श्याम सुंदर को पकड़ने के लिए। तो यहां सच में मीराबाई वो अपने आसन से उठती हैं और वो भागने लगती हैं। कुंवर भोजराज देखते हैं कि ये कहां जा रही हैं। इसकी जो आंखें हैं वो अधखुली आंखों से ये कहां जा रही हैं? तो अटारी पर चढ़ गई, सेकंड फ्लोर पर वो अटारी। कुंवर भोजराज ने देखा कि ये ऊपर जा रही है, अब ये हिल नहीं पा रहे हैं इतनी घायल अवस्था में। ऊपर जाकर इसने अटारी का दरवाजा खोल लिया, खिड़की खोल ली, और वो ध्यान में जैसे निकुंज का एक दरवाजा खोल रही है, तो अटारी की खिड़की खोल ली, और अब वो ऊपर से कूदने वाली थी, उसे पता ही नहीं कि क्या हो रहा है उसके साथ। कुंवर भोजराज ने देखा कि ये कूद कर इसके तो प्राण चले जाएंगे, तो उन्होंने अपनी सारी पट्टियां तोड़ी, जो उनके वो घाव थे वो सारे घाव में से रक्त निकलने लगा, और वो आओ देखा न ताओ जैसे तैसे वो अटारी पर पहुंचे और मीराबाई को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया, कूदने से बचा लिया। तो मीराबाई अपने होश में आई, जैसे होश में आई तो मीराबाई ने अपने आप को कुंवर भोजराज के आलिंगन में पाया, और मीराबाई ने कहा, आपने आपका प्रण तोड़ दिया। कौन सा प्रण? मेरे आज्ञा के बिना मेरे तन को स्पर्श किया आपने। यहां पर कुंवर भोजराज आपद धर्म था ये। कुंवर भोजराज ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा, ठीक है मेरा बा, वो तो मेरा बाई नहीं बोलते थे, उन्होंने कहा ठीक है मेरा, यदि मैंने मेरा प्रण तोड़ा है तो जैसे कहते हैं ना कि एक ब्राह्मण ज्ञान के बिना और एक क्षत्रिय आन के बिना जी नहीं सकता, तो मैं अब मेरे प्राण यहीं त्यागूंगा क्योंकि मैंने मेरे प्रण को पूरा नहीं किया। तो वहां पर वो पूरा रक्त से सना हुआ उनका शरीर, रक्त बह रहा है, घाव वो पूरे सने हुए रक्त से इतनी पीड़ा में, और फिर इतने घंटे बीत गए उस अवस्था में, उन्होंने कोई औषधि नहीं लगाई, और फिर वो मीराबाई से कहते हैं कि तुम जानती हो कि मैंने तुमसे विवाह क्यों किया, मैंने तुमसे विवाह तुम्हारे लिए किया, मेरे लिए नहीं किया, परंतु आज मैं एक और खुलासा करना चाहता हूं कि मैंने तुम्हें जब बताया था कि मैंने तुमसे विवाह तुम्हारे लिए किया क्योंकि तुम्हारा विवाह किसी और से होना ही था, तो वहां से तुम्हें बचाने के लिए, परंतु आज मैं मेरे अंदर की बात बताना चाहता हूं कि जब से बचपन से मैंने तुम्हारी भक्ति देखी तुम्हारे गिरधर गोपाल की, तो मुझे लगा कि यदि मुझे गिरधर गोपाल की कृपा चाहिए तो मुझे मीरा की कृपा प्राप्त करना आवश्यक है, और मीरा की कृपा प्राप्त करने के लिए एक ही तरीका है कि मैं मीरा का पति बनूं, नहीं तो ये कभी मेरे साथ नहीं रहेगी। और मैं जानता था कि तुम्हारी शर्त क्या होगी, जो तुमने शर्त रखी थी कि मैं तुम्हारे तन को स्पर्श भी ना करूं, तो मैं जानता था कि क्या शर्त होगी तुम्हारी। जानते बूझते हुए मैंने तुमसे विवाह, तुमने ये प्रस्ताव रखा कि मैं किसी और से शादी कर लूं, नहीं, मैंने तुम्हारे गिरधर गोपाल की जो भक्ति है उसको कसौटी पे रखा था। बहुत लोग तुम्हें बावरी बोलते थे, पागल बोलते थे, परंतु मैं जानता था कि इसका प्रेम सच्चा है, परंतु फिर भी मैं कसौटी पर रखना चाहता था, इसलिए मैंने जीवन भर तुम्हें इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया कि मैं सोचता था कहीं ये पिघल कर अपने गिरधर गोपाल को भूलकर मुझसे प्रेम करने लग जाए, यदि तुम मुझसे प्रेम करने लग जाती तो तुम फेल हो जाती मेरे उस टेस्ट में, लेकिन तुम फेल नहीं हुई मीरा, इतना निस्वार्थ प्रेम मैंने तुमसे किया, परंतु तुमने अपने गिरधर गोपाल का प्रेम नहीं छोड़ा। इसलिए मैंने जो इतने वर्ष ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है तुम्हारे साथ, मैंने जो सारे नियमों का पालन किया है इतने वर्ष, मैं केवल एक ही याचना करता हूं मीरा तुमसे, मैं तुमको हर दिन देखता कि तुम तुम्हारे गिरधर गोपाल के साथ बातें करती थी, एक बार तुम्हारे गिरधर गोपाल का दर्शन मुझे हो जाए। मैं आज दिन तक उसका दर्शन नहीं कर पाया हूं, तो अब मैं मेरी मरण शैया पर हूं। तो जब मीरा ने ये वाक्य सुने कुंवर भोजराज के, तो मीरा के आंखों से आंसू आ गए और फिर मीरा ने अपने गिरधर गोपाल को प्रार्थना करी कि आप कृपा कर आपका दर्शन इन्हें दीजिए। तुरंत गिरधर गोपाल वहां पर प्रकट हुए, परंतु कुंवर भोजराज देख नहीं पा रहे थे। मीरा देख पा रही है, परंतु कुंवर भोजराज देख नहीं पा रहे। तो कह रहे हैं कि तुम किससे बातें कर रही, मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा। तब फिर श्रीमती राधा रानी आती हैं और श्रीमती राधा रानी मीराबाई से कहती हैं कि तुम्हारे पति वो दर्शन श्याम सुंदर का, गिरधर गोपाल का इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि तुम्हारी दृष्टि नहीं है इनके पास। इसलिए मीरा तुम्हें तुम्हारी दृष्टि देनी होगी तुम्हारे पति को, और उतना समय तुम्हें अंधा होना होगा। तो मीराबाई ने फिर अपनी दृष्टि अपने पति को दी, और जैसे ही मीराबाई की दृष्टि कुंवर भोजराज प्राप्त करते हैं, तुरंत उन्हें साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम गिरधर गोपाल श्याम सुंदर के दर्शन होते हैं, और श्याम सुंदर गिरधर गोपाल के दर्शन करते हुए वो अपने प्राण छो बैठते हैं। और मीराबाई जैसे ही अपने पति को ऐसे भाव विभोर अवस्था में प्राण छोड़ते हुए देखती है, तो मीराबाई वो राधा श्याम सुंदर से कहती हैं कि मैंने जो इतनी अनन्य भक्ति पूरे जीवन भर करी आपकी, ऐसा कैसे हुआ कि मेरे पति को मुझसे पहले आपके धाम का वास मिल रहा है। तब श्रीमती राधा रानी कहती हैं, ये इसलिए क्योंकि भक्ति का नियम यही है। भक्ति का नियम यही है कि जो भगवान के भक्त होते हैं उनसे ज्यादा कृपा जो उन भक्तों की सेवा करता है उसको प्राप्त होती है। इसलिए उस ध्यान में जब तुम अटारी पर चढ़ गई थी और अटारी पर चढ़कर खिड़की का दरवाजा खोलकर तुम कूदने वाली थी मीरा, अपने नियम को तोड़ते हुए अपने स्वयं के दर्द पीड़ा को वो बिल्कुल ध्यान न देते हुए उन्होंने जो तुम्हें बचाया, तुम्हारे प्राणों को बचाया, वो जो सेवा कुंवर भोजराज ने की उसके वजह से, और जो उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन पूरे जीवन भर किया, वो सब का श्रेय उनके अंतिम सांसों के समय ये उन्हें प्राप्त हुआ है। और मीरा ने जब ये सुना राधा रानी के मुख से, तो मीरा वहां पर वो नाचने लगी। मीरा नाचने लगी, यहां पर उनके पति मरे हुए पड़े हैं और वो नाच रही हैं। तो समय विक्रम सिंह और कुंवर भोजराज की बहन उदा वो देखते हैं कि अरे ये मर चुके हैं और ये नाच रही है, ये क्या दृश्य है, ये क्या पागलपन है। तो उदा वहां पर भागकर आती है चूड़ियां तोड़ने के लिए, मीराबाई की चूड़ियां तोड़ने के लिए, सिंदूर मिटाने के लिए। मीराबाई उदा का हाथ पकड़ लेती है, खबरदार खबरदार जो मेरी चूड़ियां तोड़ी, खबरदार जो मेरा सिंदूर उजेड़ा, क्योंकि मैं सदा सुहागन हूं, गिरधर गोपाल वो मेरे पति हैं, और तुम जानती नहीं हो कि ये कुंवर भोजराज कहां कौन सी सदगति को प्राप्त हुए हैं। तो विक्रम सिंह, उसने जब देखा कि ये इसका पागलपन बढ़ता जा रहा है, इस मीरा का पागलपन बढ़ता जा रहा है, तो उसने फिर निश्चित किया कि इस मीरा को मुझे खत्म करना है। और मीराबाई का नियम था, उनके पास शालिग्राम था जिनकी वो पूजा अर्चना रोज करती थी, और उनका नियम यह था कि वो शालिग्राम का चरणामृत ग्रहण करने के पश्चात ही वो दिन में कुछ खाती पीती थी। तो विक्रम सिंह ने मीराबाई के उस शालिग्राम को चुरा लिया। अब एक दिन बीता, दो दिन बीता, मीराबाई बिलख रही हैं, रो रही हैं। तीन दिन हुआ मीराबाई ने कुछ पिया नहीं, कुछ खाया नहीं। तो विक्रम सिंह देखता है कि अरे ये तो शायद ऐसे भी नहीं मरेगी। तो विक्रम सिंह उदा अपनी बहन से कहता है कि थोड़ा चरणामृत बनाओ, और चरणामृत में कालकूट विष डालो, और ये ऐसा जहर होना चाहिए कि यदि जीव तो क्या केवल अधरों पर स्पर्श हो जाए तो व्यक्ति मर जाए। तो ऐसा विषैला विष वो मीराबाई को दिया पीने के लिए कि ये है चरणामृत, शालिग्राम तुम्हारे मिल गए, तुम चरणामृत लो पहले। तो मीराबाई ने चरणामृत पिया, हालांकि वो चरणामृत नहीं था, विष था। और वो पीने के पश्चात मीराबाई और भाव विभोर होकर नाचने लगी। तो ये विक्रम सिंह, ये उदा, बाकी के रिश्तेदार संबंधी सोचने लगे कि शायद अब वो विष काम करेगा, थोड़े समय बाद काम करेगा। वो विष वास्तविक रूप में चरणामृत में ही परिणित हो गया। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मेरा सागर में सरिता समाने लगी, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी। तो ये मीराबाई वहां पर गोविंद गोपाल गाते हुए भाव विभोर अवस्था में नाच रही है। बहुत घंटे बीत गए, पूरा दिन बीत गया, कुछ नहीं हुआ मीराबाई को। तो विक्रम सिंह ने सोचा कि शायद वो जहर नकली था। तो इसने सपेरे को बुलाया, सपेरे को बुलाया और सपेरे को कहा कि तुम्हारे सर्पों में जो सबसे जहरीला सर्प है वो टोकरी में लेकर आओ, जो सबसे जहरीला नाग है उसको लेकर आओ। तो लेकर आया और उस जहरीले नाग को उस टोकरी में डालकर मीराबाई के सामने रखता है। विक्रम सिंह कहता है तुम्हारे शालिग्राम मिल गए, इस टोकरी में तुम्हारे शालिग्राम है। कि मीराबाई जैसे ही वो टोकरी खोलेगी तो वो नाग डस देगा और फिर कोई मिलावट उस विष में नहीं होगा। तो जैसे ही मीराबाई को यह समाचार मिलता है कि इस टोकरी में मेरे शालिग्राम है, तो मीराबाई वो टोकरी खोलती है और वास्तविक रूप में मीराबाई के शालिग्राम वहां पर उस टोकरी में होते हैं। और आज भी वृंदावन में जो शाहजी मंदिर है उसके बगल में मीरा का मंदिर है, वहां पर ये नागों की टोकरी से उत्पन्न जो शालिग्राम है वहां पर। और फिर ये धीरे धीरे वहां के मेवाड़ के लोग समझने लगे कि ये कोई बांवरी नहीं है, ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। यहां तक कि अकबर, आगरा में जो अकबर था वहां पर वो बादशाह बना हुआ था, वहां तक खबर फैली। तो जब इसकी प्रसिद्धि बढ़ रही थी मीराबाई की, तो विक्रम सिंह से सहन नहीं हुआ, तो उसने एक और चीज करी। एक बार मीराबाई सत्संग कार्यक्रम के लिए निकली जहां पर केवल कीर्तन आयोजित किया गया था भगवान का, तो रोक रहा था ये विक्रम सिंह जाने से, परंतु फिर भी ये गई तो इसके पीछे इसके जो कक्ष में अंतपुर में विक्रम सिंह ने इसकी शैया के ऊपर ऐसे कांटे लगा दिए, विष में मिश्रित कांटे, कि रात को जब सोने आएंगी तो ये सारे विष से मिश्रित कांटे इसको चुभेंगे और ये सुबह मर जाएगी। रात में देर से मीराबाई कीर्तन का वो सत्संग कार्यक्रम अटेंड कर आती हैं, जैसे ही पूरा अंधेरा होता है वो अपने शयन कक्ष में प्रवेश करती हैं तो महक, फूलों की महक उसे उनके उनके नाक में जाती है और वो इतना मदहोश कि वो सो जाती हैं उसी शैया पर। तो होता क्या है कि स्वयं राधा श्याम सुंदर वो अपने स्वयं की शैया वृंदावन धाम से उठाकर इससे बदल देते हैं और वृंदावन के जो पुष्प हैं उनकी जो महक है वो महक वो पूरे रात भर मीराबाई उस ध्यान में रहती है। इसलिए जब उनके जीवन में इतने सारे दुख आए और मीराबाई ने वो सारे दुख, यहां तक कि उनके स्वयं के पति, वो जो इतने पर्सनली अपने पत्नी को मीराबाई को बचपन से जानते थे, उन्होंने काफी पद लिखे हैं और उनके पद में उन्होंने कहा है, मीरा के रग रग में श्याम कुछ इस कदर बस गया, मीरा के रग रग में श्याम कुछ इस कदर बस गया कि दुख भी दुखी सोच रहा कि मैं कहां फंस गया। तो मैं इसलिए सुनाना चाह रहा था क्योंकि अक्सर हम लोग इस्कॉन में मीराबाई के विषय में अक्सर इतना नहीं सुनते, इतना जानते भी नहीं है, लेकिन ये जो 14th लेसन हम सीख रहे हैं कौन सा है, नॉट ऑल हीरोज हैव बिग मसल्स। इस लिस्ट में हमारे कलयुग में जो मीराबाई हुई ऐसी अनन्या भक्त जिनका निज रूप भगवान श्री श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर की रासलीला में माधवी सखी के रूप में है, उन्होंने अपने इस आदर्श उदाहरण से प्रस्थापित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आज शाम को जो मीराबाई के भक्ति के स्रोत हैं श्रीमती राधा रानी, आज शाम को ऐसे जो प्रधान गोपिका, उनका एक नाम है प्रधान गोपिका अनयाराधिता अनूनम, सुखदेव गोस्वामी जो श्रीमद् भागवत में कहते हैं, तो जो सबसे गोपियों में भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में जो स्रोत हैं इन सब के श्रीमती राधा रानी, जिनका महीना आज से प्रारंभ हुआ है, तो आज शाम के हमारे प्रवचन में हम उनकी चर्चा करेंगे। बोलो शरद पूर्णिमा महामहोत्सव की जय, श्री राधा दामोदर भगवान की जय, मीराबाई की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदी
श्रीमान शिक्षाश्रम प्रभु की। हरे कृष्णा। कुछ सूचना